پاکستان کے 2020-21 کے بجٹ کے اعلان کے بعد کی تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے دفاعی بجٹ میں 11.9% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ بجٹ میں یہ اضافہ دراصل ایسے منصوبوں کی تعمیر کے بارے میں ہے جو سول مسلح فورسز کے استعمال میں آئیں گے۔
دیکھیے، بجٹ میں انہوں نے ایک کام غلط کیا جو سول ورکس حکومت نے کروانے تھے، اور وہ بھی منسٹری آف انٹیریئر کے حساب میں آتے ہیں، لیکن وہ ادھر بجٹ میں انہوں نے دکھائے ہیں ڈیفنس بجٹ میں۔ اس میں دو طرح کے خرچے ہیں، ایک تو بنیادی طور پہ ہیں یہ سارے وہ جو حفاظتی فینس لگائی جا رہی ہے بارڈرز کے ساتھ ساتھ، اس کے پیسے ہیں، اور اس کے ساتھ جو فورس بنائے جا رہے ہیں، اب یہ استعمال ہوں گے، سول آرم فورسز کریں گے، یعنی ان کے جو چھوٹے چھوٹے فورس بن رہے ہیں ان میں ایف سی بیٹھے گی، وہ فرنٹیئر کور نے استعمال کرنے ہیں، لہذا یہ فرنٹیئر کور جو ہے یہ منسٹری آف انٹیریئر کی ٹروپس ہیں، سول آرم فورسز کہلاتی ہیں، تو ان کے حساب میں جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چونکہ پرپوزل آرمی کی طرف سے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو ڈیفینس بجٹ میں شامل کر دیا۔ پچھلے سال یہ تقریباً کوئی 4 پوائنٹ، یعنی جو ایکچوئل بجٹ تھا اس سے کوئی 4.5% انہوں نے زیادہ دیا، اور وہ خرچہ آیا افغانستان پہ جو فینس لگی اس سائڈ پہ۔ اس سال انہوں نے ایران کا بھی، پاکستان آرمی نے تجویز کیا کہ ایران سائڈ پہ بھی فینسنگ کریں، کیونکہ سی پیک کے تحفظ کے لیے یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ وہاں سے ٹیررسٹ ہو رہے تھے اٹیکس وغیرہ، تو انہوں نے 4.5% اس کے لیے بھی کر دیا اضافہ۔ اب وہ دونوں چیزیں بجٹ میں ہیں، اور غالباً اس کا کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ کنسٹرکشن جو ہے وہ آرمی کروا رہی ہے، ہمارے آرمی کے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے وہ، یعنی آرمی انجینئرز، وہ بنا کے دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے موسٹ پرابلی انہوں نے اس میں شامل کیے، جبکہ یہ ہے کام سول آرم فورسز کے لیے، اور پیس ٹائم میں وہی استعمال کریں گے، وہی یہاں بیٹھے ہوں گے۔
امتیاز عالم ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر کیے گئے اخراجات بعد میں بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی سرحدوں کی صورتحال بھی ہے جہاں کشیدگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔
بار کیا ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے اس سے جب ریوائز کیا جاتا ہے تو دفاع کا بجٹ خاص طور پہ بڑھ جاتا ہے، اور بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایسٹیمیٹس ہم عام طور پہ کرتے ہیں، کم خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیفینس کے ابھی بھارت سے جو ٹینشن چل رہی ہے، اوپر اس سے افغانستان میں سب معاملہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے، پولیٹیکل اکانومی جو ہے اس کی، اس کا بڑا فیکٹر ہے کہ یہ خرچے کم ہو سکتے ہیں۔
جنرل شعیب بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ برس بجٹ میں بعد میں اضافہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ سرحد پر باڑ لگانے کے منصوبے میں توسیع کا فیصلہ بعد میں کیا گیا۔
وہ پچھلے سال بھی جب یہ انہوں نے لاسٹ ایئر ایکسپینڈیچر بڑا ہے تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے وہ فینس ایکسٹینڈ کرنی شروع کی تو اس پہ گورنمنٹ کو ایکسٹرا دینا پڑا، تو گورنمنٹ نے اس سال اس کو کیٹر کر لیا، ورنہ بجٹ میں پچھلے سال 4.5 انڈیکیٹڈ نہیں تھا، یہ بعد میں شامل ہوا جب یہ پرپوزل بنی کہ جناب اس کو افغانستان اور ایران دونوں کو لنک کر کے یہاں پہ فینس بنائی جائے، لگائی جائے، تو اس دفعہ انہوں نے پہلے سے شامل کر دیا۔ اب وہ چیز جو ہے یہ گورنمنٹ نے وضاحت دی ہے۔
امتیاز عالم کہتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے بزنسز کی سول فیز میں کافی توسیع ہوئی ہے۔
دیکھیے، کافی ایکسپینشن ہوئی ہے سولین فیز میں، آرمی کے بزنس، آرم فورسز کے بزنسز کی، اسٹیٹ بزنس دیکھ لیں آپ، اسی طرح بہت سارے بڑے ادارے ہیں، جیسے NDMA ہے، جیسے خود سی پیک ہو گیا، کہ جیسے نیشنل لاجسٹیکل سیل ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے، اب تمام بڑے ٹھیکے بھی تعمیرات کے انہیں ہی مل رہے ہیں، اس سے بھی کافی پیسہ فوج افواج کو ملتا ہوگا۔ اب یہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کتنا یہ فوج کے اخراجات ان ذرائع سے کتنے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی جو معاملہ ایسا ہے، نہ ہی اکانومسٹ نہ ہی سیاستدان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی ریئلسٹک بات کر سکتے ہوں۔
اقتصادی ماہر اور کنسلٹنٹ قیصر بنگالی کا بھی کہنا تھا کہ فوج اب ایسے کمرشل منصوبوں میں الجھ رہی ہے جو اسے زیب نہیں دیتے۔
دو باتیں اس میں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کے کمرشل انٹرپرائزز ہیں ان پیسوں سے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر وہ بجٹ میں نہیں جاتا، ان کے جو پروفٹس ہیں وہ انہیں کے اداروں میں رہتے ہیں، ان کی جو انکم ہے، ان کے جو ریونیوز ہیں، वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी में नहीं जाता, डिफेंस एक्सपेंडिचर टोटली ये बजट से लेते हैं। दूसरा ये है कि सवाल पैदा होता है, क्या फौज का काम है कमर्शियल एंटरप्राइजेस चलाना? मतलब यहाँ तक के अब तो धोबी का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया, देर इज आर्मी लॉन्ड्री है इनकी, कसाई का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया, मीट प्रोसेसिंग प्लांट है और बुचर्स शॉप है फौज की, ये क्या फौज का काम है? आई कैन, मैं अपने कपड़े दे सकता हूँ फौजी लॉन्ड्री को, मैं फौजी मीट शॉप से जाके खरीद सकता हूँ गोश्त, अस्करी बैंक है मैं अपना अकाउंट खोल सकता हूँ, सबके लिए है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करते हैं फिर, और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, चूंकि इनको तो एक किस्म की बैकअप है स्टेट की, इनका इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स स्टेट से अंडर रिटर्न होती है इनफॉर्मली।
लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन ऐसा इदारा है जो फौजियों और उनके अहले खाना की फलाह का काम करता है और अपने तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करता है। इसके अलावा बाद सिविल इदारों में फौज का शेयर सिर्फ 43% है और अगर ये इदारे अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो 57% फायदा सिविल हुकूमत ही को होगा।
जितना वेलफेयर का काम है वो आर्मी 100% अपने जराए से करती है, हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया जाता। मसलन जो आप देखिए कि हम शहदा को बहुत लुक आफ्टर करते हैं, उनको घर बना के दिए जाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो जिनके आजा नहीं रहे उनको पूरी जिंदगी के लिए एक साथ मुलाजम दिया जाता है कि वो उनको चला सके, या उनको फिर उनको ये ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स और मुख्तलिफ चीजें जो उनकी जिंदगी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर सके, उसके लिए पैसा मिलता है हमें जो हमारे आर्मी वेलफेयर डायरेक्टरेट है वहां से, आर्मी वेलफेयर के प्रोजेक्ट है ये फौजी फाउंडेशन से। अब फौजी फाउंडेशन ने यहाँ पे प्लांट लगा के दिया है, जब से ये वॉर ऑन टेरर का मसला आया तो लोगों के आजाज आया होना शुरू हुए, तो उस पर फौजी फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल लिम्स का प्लांट लगा के दिया आर्मी को फ्री, मतलब अपने वेलफेयर के पैसों से, तो गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो अक्सर लोग एतराज करते हैं कि ये जो आर्मी ने बिजनेस खोला हुआ, आर्मी का बिजनेस उसमें सिर्फ 43% है, जितने भी अदारे हैं फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी सीमेंट है, या बैंक है आपका अस्करी बैंक है, इनमें आर्मी का यानी हमारी फाउंडेशन का, फौजी फाउंडेशन का सिर्फ 43% शेयर है। 57% शेयर जो है वो पब्लिक का है या गवर्नमेंट के उन लोगों के हैं जो कि बैंकों का होगा, आम आदमी के शेयर होंगे। तो इनको अच्छी तरह अगर चलाया जाता है तो 57% जो है वो सिविलियन फायदा उठा रहे हैं।
पाकिस्तान में फौजी अफसरों को सिविल ओहदों पर तैनात किए जाने की रिवायत रही है। मौजूदा हुकूमत ने भी बास अहम ओहदों पर फौजी माहरीन तैनात किए हैं। इस बारे में जनरल शुएब का कहना है कि अगर फौज के रिटायर्ड अफसर ये काबिलियत रखते हैं कि वो सिविल ओहदों पर खिदमत अंजाम दे सकें तो इसमें क्या हर्ज है?
नहीं, इतना नहीं, बात यह है कि ये इशू आजकल बड़ा उछाला गया है। असल चीज ये है कि जो भी रिटायर्ड आदमी है वो पेंशनर है और पेंशन लेता है, लेकिन वो अगर कोई तनख्वाह ले तो पेंशन उसकी बंद कर दी जाती है, सो वो एक तरफ से पैसे लेगा, लिहाजा गवर्नमेंट को ये सूट करता है, गवर्नमेंट को उसमें बचत होती है। एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है, फिर आप देख लीजिए कि उन लोगों की एक अपना डिसिप्लिन है जो बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं। एक इन्होंने ये आसम सलीम बाजवा को लिया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर जो है हमारा सीपैक का, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इज जस्ट कोऑर्डिनेटर, और दूसरा उनके नीचे सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी जो है वो उसकी गारंटी पाकिस्तान आर्मी ने दी हुई है चाइना को, यानी चाइना के साथ ये कंडीशन थी कि पाकिस्तान आर्मी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले, तो वहां पे एक रिटायर्ड ऑफिसर को रखा गया इस वजह से कि वो सिक्योरिटी वाले एलिमेंट्स उसके नीचे है।
उनका कहना था कि ये फौजी माहरीन जब भी किसी सिविल ओहदे पर तैनात किए गए उन्होंने अपनी काबिलियत से उस शोबे को तरक्की दी। उन्होंने माजी में पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA में फौजी अफसरों की बेहतर कारकर्दगी की मिसाल दी।
तो ये है कि ये स्टील मिल हुई, ये हुआ, अब स्टील मिल जनरल कयूम चला रहे थे 2008 में, उन्होंने छोड़ी 2007 में, उस वक्त 20 अरब रुपए का प्रॉफिट था।
कैसर बंगाली ने इससे इत्तेफाक नहीं किया।
किसी इदारे को 2 साल के लिए मुनाफे बख्श करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मुझे पता है किस तरह ये हो सकता है। मतलब अगर मैंने पुराना स्क्रैप बेच दिया तो उस वक्त रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट में चला गया। जब जनरल मुशर्रफ वो आए थे तो एक फॉर्मर ISI के DG थे जो रेलवे मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने कहा मैं 6 महीने में रेलवे को खसारे से प्रॉफिट में ले आऊँगा, और उनका तरीका यह था कि जो रेलवे की जमीन पे कच्ची आबादियां हैं जो 40-40 साल से वहां पर है, उन कच्ची आबादियों को हटा के जमीन बेचेंगे तो रेलवे प्रॉफिट में आ जाएगा। कमाल की बात तो ये होती कि जो रिफॉर्म करते उनके दौर में, फौजी दौर में, और वो उसकी वजह से एक मजबूत इदारा खड़ा हो जाता आगे चल के।
उन्होंने कहा कि रिटायर्ड ही नहीं हाजिर फौजी अफसर भी बाज ओहदों पर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसर पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल कराची में तैनात रेंजर्स हैं जो दो तनख्वाहें लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि फ़ौज अपने तामीराती मंसूबों के अखराजात अपने वसाइल से पूरे करती है और इसका हाउसिंग का शोबा इतना बेहतर और मुनज़्ज़म है कि हुकूमत ने भी इसे हाउसिंग के अपने मंसूबों के लिए काबिले कदर जाना है।
फिर हाउसिंग का जो गवर्नमेंट ने बनाया एक, उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल लिया है और एक आध और अभी उसको असिस्टेंट मेजर जनरल के तौर पे दिया गया है। उन लोगों को यह तजर्बा था हाउसिंग का, सो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपके इतने सक्सेसफुल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप अपने सारे सर्विस को देते हैं और बनाते भी आप बड़ी कम कीमत में है, तो हमें अपनी आपकी एक्सपर्टीज चाहिए तो अपने लोग दें। सो इनको दो एक ऑफिसर वहां से दिए गए जो हाउसिंग डायरेक्टरेट चला रहे थे।
ताहम कैसर बंगाली कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि फौज की ये तामीरात पायदार रही हों।
ये मिथ है। बहुत सारी कराची में एक पुल बनाया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स फौजी वो थे, 15 दिन के बाद वो पुल गिर गया और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो इंक्वायरी हुई लेकिन कोई बात आगे दोबारा मीडिया में नहीं आई। तो इस तरह नाकामी के बेशुमार। अभी कराची में इन्होंने ग्लियरी एक्सप्रेस वे बनाया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो जो बनाने का सारा जवाब ये था कि जो हैवी ट्रैफिक है वो में सड़कों से हट के ही एक्सप्रेस वे पे चला जाएगा। जब एक्सप्रेस वे बन गया तो अब हैवी ट्रैफिक उस पर अलाउड नहीं है। जब मालूम किया अब जी क्यों अलाउड नहीं है, उन्होंने कहा जी ये बहुत कमजोर है, हैवी ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता।
पाकिस्तान में फौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि किसी भी मौसमी आफत, ख्वाब सैलाब हो, जलजला या कोई और कुदरती आफत, फौज सिविलियन आबादी की मदद के लिए मौजूद होती है। सी पैक जैसे तरक्याती मंसूबे जो बैन अलावामी अहमियत के हामिल हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी फौज संभाल रही है और मुल्क को दहशतगर्दी के इफरीत से महफूज रखने के लिए फौज की खिदमत और कुर्बानियाँ न सिर्फ मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए असासा हैं बल्कि तारीख में भी रकम हो चुकी हैं। ताहम पाकिस्तान के माशरे में फौज और सिविलियन का फ़र्क मौजूद है और इस फ़र्क को दूर करने के लिए शायद कोई माहिर मौजूद नहीं है। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।